آج آپ کے سامنے ہم ہمارا آج کا وشے ہے کوالٹی آف لائف. اینڈ اف وی ہیو اینی تھنگ وی کین امپروو اٹ کوالٹی دین وی وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ. دس وٹ دا ہول بزنس آف لائف از اباؤٹ. سو لیٹس لک ایٹ ہو وی آر. As such, we are conscious beings, different from so many other things that lack consciousness. Consciousness is an unusual attribute. It gives us three very extraordinary powers: ability to know something, what we see, what we hear, all that gets registered through our five sensory organs. We have modern gadgets like camera, recording devices. They also pick up the audio, video and many other signals. They can also preserve it. But we will never say that they know these words. I am speaking a word, you are hearing, and that gets registered to you as a piece of knowledge. If there was a recording device that was also listening to my words, we won't say that that has the knowledge of the meaning of what I am saying, isn't it? So that is my ability to grasp the knowledge content of whatever is coming through my five senses. Ability to know. And when I know something, it becomes an experience. I go through it. It affects me. And then I act upon my surroundings. So ability to know, ability to experience, ability to act and influence the surroundings. Of course, all this in a very limited sense. We are tiny beings. Sanskrit mein shabd hai iske liye jyatratva, bhoktratva, kartratva. Ye teen shaktiyan hai hamari. Pashu pakshi ki bhi hain ye sab. Jahan jahan chetna hai wahan ye shaktiyan hain. Aur isliye main ho gaya knower, جاتا بھوکتا اور کہتا. تو باٹم لائن ہمیشہ ہے میں مجھے کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کہا, ہم کچھ چیز سے گزرتے ہیں جس کو ہم بولیں گے, جس میں ڈائپول ہیں, بہت بڑا اسپیکٹرم ہے, سکھ دکھ یا بول چال میں شانتی اشانتی, اور ایسے ہمارے شبد ہیں. آپ کیسے ہیں جی؟ میں بہت اچھا ہوں, میرے من کی استھتی بہت اچھی ہے. تو جو ہمارا بھوگ ہے انت میں وہ ہماری لائف ہے. دیٹ از دا کوالٹی آف لائف. تو ہمارا جو نالج اینڈ ایکشن از آلویز ٹرائنگ ٹو مینیمائز دا دکھ پین اینڈ سفرنگ اینڈ اف پاسبل میکسیمائز پلیزنٹ joy. That's what life is. That's what animals also do. We also do that. Might be doing in a more sophisticated manner. So Sanskrit ke teen shabd likhe maine, jyan, karm and bhog. Aur jyan aur karm ka uddeshya pyara hota hai. Aur isme hamare andar ek aastha hai. Abhi hum Ishwar ki baat nahi kar rahe. Main swayam aisa hoon. اور جب جیان اور کرم کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے اندر ایشور کے پرتی آستھا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہم نے کرم کیے ویسا ہی ہمیں بھوگ ملتا ہے. بھوگ ہمارا آربیٹری نہیں ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی سکھ آ گیا کوئی دکھ آ گیا. ہم نے جس کو بلایا وہی آتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا اس سکھ کو یا اس دکھ کو میں نے کب بلایا تھا. ہم کب بلاتے ہیں؟ جب ایسا کرم کرتے ہیں تو ویسا ہمیں بھوگ مل جاتا ہے. तो हमें एक सिद्धांत आया है, कर्म फल सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। आजकल बाहर वाले भी बहुत बातें मानने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है, कोई वन टू वन करेस्पॉन्डेंस नहीं दिखती है। आज मुझे अभी जो सुख है तो ये किस कर्म का सुख है, हम कोरिलेट नहीं कर पाते। पर ईश्वर ने हमें कह दिया कि अच्छे कर्म का फल सुख है और बुरे कर्म का फल दुख है। तो अच्छे कर्म को उन्होंने नाम दे दिया धर्म, और जो दुष्कर्म बुरे कर्म है उसका नाम दे दिया अधर्म। यहां धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यहां धर्म मतलब वैसे कर्म, राइटियस एक्शन, पुण्य कर्म, जिससे आपको सुख मिलेगा। तो ये जो ज्ञान कर्म भोग है, इनमें आपस में रिलेशनशिप है। जैसा मैं कर्म करता हूं वैसा ही मुझे फल भोगने को मिलेगा। और कोई एक शक्ति है जो कर्म फल पैदाता है ना। तो ये बातें हम थोड़ा इस पर विचार करना चाहते हैं, और हमारे ऋषियों ने हमें क्या संदेश दिया उसको थोड़ा विवेचन करेंगे। तो वैसे ही ईश्वर में भी यही तीन शक्तियां, ईश्वर भी चेतन तत्व है, हमारा भी आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। और अभी जो मैंने पिछली बात कहा ना, ज्ञान कर्म भोग, तो हमारा आत्म तत्व इतना छोटा है, उसमें ये शक्तियां तो हैं पर ये क्षमता नहीं है। अजीब सी बात है। इट हैज दीज थ्री पावर्स, एबिलिटी टू नो, एक्सपीरियंस एंड एक्ट, बट ऑफ इट्स ओन इट कैन नॉट यूज दीज पावर्स। इट हैज टू हैव द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी। विदाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी इट कैन नॉट डू गेन नॉलेज, इट कैन नॉट एक्ट एनी, do any perform action, and it cannot go through any experience also, है ना? परमात्मा में भी यही तीन शक्तियां हैं, but he is infinite, we are infinitesimally small, तो उसे ये instrument नहीं चाहिए mind and body के, है ना? उसकी वो जो चेतन सत्ता है वो सब जगह फैली हुई है, बहुत ही सटल रूप में। ये हमारा उसका भेद है, क्वांटिटी का भेद है। पावर्स उसके भी तीन है, ज्ञान कर्म भोग, पर उसके पावर्स भी बड़े इनफाइनाइट टाइप के हैं। नॉलेज में हम कुछ सही जानते हैं, कुछ गलत जानते हैं, लेकिन उसका सब नॉलेज सही वाला है। नॉलेज हमारी क्वालिटी भी, क्वांटिटी, क्वालिटी तो मैंने कहा सही भी है गलत भी है, क्वांटिटी भी हमारी सीमित है। किसी का कोई स्पेशलिस्ट है, कोई थोड़ा सा विषय उसको ज्यादा अच्छी तरह मालूम है, पर बाकी विषय उसे ज्यादा नहीं मालूम है। हम सबको थोड़ी थोड़ी बातें मालूम है, कुछ कुछ विद्याएं मालूम है, थोड़ी सही थोड़ी गलत, और उसका नॉलेज इनफाइनाइट है, पूरा है और सब सही है। और उसके एक्शन भी सब राइटियस है, वो अधर्म तो कुछ कहता ही नहीं, जो सब कर्म उसके अच्छे होते हैं। और उसका भोग भी, हमारे तो डाइपोल है, स्पेक्ट्रम है सुख दुख का, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है उसका, एक एक सिंगल लाइन है, उसको हम कह देते हैं आनंद। पिछली स्लाइड में मैंने वो शब्द लिखा है, आनंद नहीं, अभी नहीं लिखा है मैंने, सॉरी, आगे की एक स्लाइड में आएगा। तो वो हमेशा बोलचाल की भाषा में, सुख दुख की भाषा में बोले, वो हमेशा सुख में ही रहता है, परम सुख उसको बोलते हैं। और उसके लिए एक आनंद शब्द इसलिए बना दिया कि सुख का उल्टा दुख है, शांति का अशांति, आनंद का उल्टा नहीं है कुछ, है ना? वो एक रस है, हमेशा एक रस बोलते हैं, होमोजेनस स्टेट में रहता, वो हमेशा आनंद में रहता। तो कहने को तो यही तीन शक्तियां हैं, ज्ञाता भोक्ता कर्ता बनने की, और उसके डायमेंशंस काफी अलग हैं। तो ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि व्हेन वी वांट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ टू डू दैट। एक तो हमें समझ में आ गया, अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, पर दूसरा हम आगे की सोचते हैं कि और भी क्या कर सकते हैं, इससे भी अधिक क्या गाइडलाइन मिल सकती है। तो हमारे ऋषियों ने ईश्वर की बात को सोचकर देखिए सुख और दुख में बहुत ही सब्जेक्टिविटी है, नहीं किसी को कोई चीज सुख देती है, किसी को कोई और दूसरी चीज सुख देती है, और जो चीज आपको 10 साल पहले सुख देती थी आज शायद वो मीनिंगलेस है ना। स्पेस और टाइम में भी ये बदलते रहते हैं, तो मनुष्य सोचता है आखिर मैं चाहता क्या हूं। जिस चीज को मैं आज सुख बोल रहा हूं, थोड़े दिन बाद मुझे उससे ही कुछ, मैं उदासीन हो जाऊंगा, इंडिफरेंट हो जाऊंगा। तो क्या चीज मैं असल में चाहता हूं, ये हम भी ज्यादा जानते नहीं है। पर ये हम जानते हैं, हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बड़ा अच्छा ध्यान गया, हमारे ऋषियों की बड़ी विशिष्ट सोचने की शक्ति थी। उन्होंने कहा हम जिंदगी में इतने सारे कुछ करते हैं और हम सब बैठ कर विचार करें भाई क्या चीज हमें सुख देती है, तो हम कभी एकमत नहीं हो पाएंगे, किसी को कोई चीज है, किसी की कोई चीज। तो उन्होंने हमें याद दिलाया एक अनुभव ऐसा है, जब भी हमें मिलता है हम कहते हैं मुझे अच्छा लगा, सुख मिला या नहीं है कम से कम दुख नहीं था उसमें। ये उन्होंने पकड़ लिया बहुत तेजी से, उसको उन्होंने कहा गाढ़ी नींद जब है ना, उसका बड़ा विशेष उन्होंने नाम भी दे दिया सुषुप्ति। उन्होंने कहा जब हम गाढ़ी नींद से उठते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छा था, कोई कहे बहुत सुख मिल रहा था आपको, नहीं मैं मुझे पता नहीं मैं कहां था, आई वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं उसे सुख भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्या था, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट उस समय मुझे दुख नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, यदि कोई आपको कह दे कि आज 24 तारीख को या 25 तारीख को आपको कोई दुख नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी के अंदर इतनी ताकत है कि कह दे कि ये 24 घंटे आपको दुख हो ही नहीं सकता। तो ऋषियों ने ये खोज लिया कि हमारी एक अवस्था है व्हेन वी आर इन डीप स्लीप, डीप डीमलेस स्लीप, उस समय हमें कोई दुख छू नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज है, तो उन्होंने कहा ये स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड में कोई हलचल नहीं है उस समय, और उस समय जैसे मैं दुनिया ही नहीं है मेरे लिए, यानी फॉर दैट इंडिविजुअल एज इफ ही देयर इज नो वर्ल्ड नाउ, है वो संसार में लेकिन संसार से दूर है, क्योंकि संसार से हम जुड़ते ही हैं अपने माइंड के द्वारा, और माइंड की हलचल सब खत्म हो गई तो हमारे संसार से भी अलग हो गया थोड़ी देर के लिए, और संसार ही है सुख और दुख दोनों की नदियां यहां बह रही हैं, कभी हम इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो उसने कहा यदि मैं मन को माइंड को रोक लूं थोड़ी देर तो मुझे दुख कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा यदि आप रात में बिस्तर में जा रहे हैं और अच्छी नींद मिल गई ठीक है, फिर उन्होंने कहा यदि बैठ कर आपने ये कर लिया ना तो आपको दुख से दूर हो गए और एक सुख भी मिल जाएगा, रियल टाइम उसका सेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि नींद में हमें कुछ मिल रहा है लेकिन हमें उसका ध्यान नहीं, हम उसको बटोर नहीं पाते, हम रियल टाइम टेस्ट नहीं है उसका कुछ, नोबडी कैन से व्हाट डीप स्लीप वॉज लाइक। तो ऋषियों ने कहा कि वही वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको आप उसका एप्लीका क्रिएट कीजिए इन द डे टाइम, है ना। इसी को उनको उन्होंने नाम दे दिया उपासना। तो उपासना में क्या है, इसको आप मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, यू ब्रिंग योर माइंड टू ए ब्लैंक स्टिल स्टेट, जैसा कि सुषुप्ति में है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और जब वो सिस्टम आपका डाउन हो गया, जैसे मेरा कंप्यूटर डाउन हो जाए तो मैं छोड़कर अलग हो जाऊंगा, आपने कार यहां खड़ी कर दी है, सब इंजन बंद कर दिए, सब ठीक है, आप उससे बाहर आ जाते हैं। व्हेन द सिस्टम इज नॉन फंक्शनल देन यू डिसएंगेज फ्रॉम इट, यदि सिस्टम इज वर्किंग देन यू आर एंगेज्ड विद इट, है ना। अभी मेरा ये चल रहा है, मैं इसको देख रहा हूं, यदि यही स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाए तो मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूं। तो वही हमारी माइंड स्क्रीन है, अंदर अंदर भी एक लैपटॉप है और मैं बैठा हुआ हूं, आप माइंड को ऐसे ही समझिए, एक कंप्यूटर स्क्रीन है और आप उसके सामने बैठे हैं। 5 इनलेट पोर्ट है, ये जो आंख कान वगैरह है, कुछ आउटलेट पोर्ट्स हैं हाथ और पैर ये सब, और उस कंप्यूटर सिस्टम अंदर चल रहा है, आप अंदर बैठे हुए। तो उन्होंने कहा रात में तो अपने आप कोई पता नहीं कोई उसका प्लग खींच देता है, वो कंप्यूटर सिस्टम डाउन हो जाता है, तो आपको नींद आ जाती है, गाढ़ी नींद में सुषुप्त। अब दिन में आप उस कंप्यूटर को डाउन करना सीख जाइए, या वो जो अंदर का टीवी है उसको ऑफ करना सीख जाइए, देन यू आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम, और उससे आप डिस्कनेक्ट हुए तो आप उससे कनेक्ट हो गए ऑटोमेटिक। इसी को कह दिया उन्होंने उपासना, उप और आसन, उसके साथ बैठना। तो उन्होंने कहा जो डीप स्लीप वाला है वो आपको यहां मिल जाएगा, एंड दिस इज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, फिर इससे आप ये सुख और दुख का जो खेल है इसके आप मास्टर बन जाओगे, फिर ये सब चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये माइंड का ही खेल है, हम कभी सुखी हैं कभी दुखी हैं, एंड इफ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड सिस्टम देन एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। तो ये बात उन्होंने हमें समझाई है। मैं इसका ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं एक विषय में से एक विषय निकाल रहा हूं, और संयोग ऐसा ही है कि मैंने कल ही पूछा, परसों एक शादी में हम साथ थे आचार्य श्री नंदा जी से, तो उन्होंने भी कहा आय समाज के नियम की अभी यहां व्याख्या, मुझे पता नहीं चलता है यहां क्या चल रहा है आजकल, तो संयोग से उसका मैं वो विषय मैंने बना भी लिया था। तो आइए बात करते हैं, अभी हमने लिखा हमारी 3 शक्तियां हैं ज्ञान कर्म और भोग। अब आ गया ज्ञान और कर्म तो है ही, ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, अब भोग को हम थोड़ा, हम ईश्वर का पूरा ज्ञान तो प्राप्त कर नहीं सकते, ईश्वर के कर्म हम कर नहीं सकते, हम चंद्रमा और सूर्य को तो हिला नहीं सकते, लेकिन हम अपने भोग को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो सुख दुख से हटकर थोड़ा, और सुषुप्ति का हमने क्लू पकड़ लिया कि सुषुप्ति वाला हम थोड़ा डे टाइम कहेंगे, उपासना कहा, तो अब ज्ञान कर्म तो ज्ञान कर्म जैसे के तैसे हैं, भोग को हमने एक दिशा दे दी उपासना की। और उपासना के क्या फल हैं हमें लोगों ने बहुत सारी बताए हैं, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, एक बात तो छोटा सा वाक्य लिखते हैं कि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम छोटे से मनुष्य हैं, और वो बोल रहा है उपासना से आपके, उनके 3 शब्द होते हैं गुण कर्म स्वभाव, गुण है योर कैरेक्टरिस्टिक्स, कर्म है योर एक्टिविटी, स्वभाव है योर इननेट नेचर, है ना। तो ये एक व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है, उसके क्या गुण है कर्म है स्वभाव है, ये दयानंद का बात करने का तरीका है। तो कहते हैं उपासना से आपके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है ना। क्वालिटेटिवली आप ईश्वर जैसे हो सकते हो, थ्योरेटिकली यदि आपने उपासना की अच्छी प्रोग्रेस कर ली, पर हाँ आप हमेशा वही एक छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रहोगे, बट दैट इज ए ह्यूज प्रोग्रेस, एंड इफ यू वांट यू कैन लुक एट दैट एज ए सक्सेस ऑफ योर लाइफ। तो आप ये भी ढंग, बहुतों का अपना अपना सक्सेस का क्राइटेरिया है, इतना कमाना है, इतने बड़े पद को पाना, जो भी है आप इस क्राइटेरिया को भी अपना कर देख सकते हैं, बाद के कभी समय में आपके काम आएगा। सक्सेस इज टू बी विद हिम और उसके जैसा हो जाना, तो दैट इज ए वेरी ह्यूज प्रोग्रेस। क्वालिटेटिवली यू विल बी लाइक हिम, बट क्वांटिटेटिवली यू विल बी ए वेरी स्मॉल, ए पॉइंट लाइक थिंग, जैसे बहुत बड़ा समुद्र की एक आप पानी की बूंद हो, लेकिन क्वालिटी उस बूंद में भी वही है जो समुद्र में, दोनों का पानी एक जैसा ही है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, दिस कैन बी अनदर वे टू लुक एट योर क्वालिटी। तो यहां एक नया शब्द मैंने जोड़ दिया, ज्ञान कर्म भोग से यदि हमने ज्ञान कर्म उपासना में हम चले गए, तो एक नया शब्द आ जाता है, दयानंद का ही है, विज्ञान शब्द। क्योंकि गुण कर्म स्वभाव जब बदलते हैं तो इससे क्या है, आपका नॉलेज और एक्शन भी बदल जाता है, है ना। आपने भोग को आनंद की तरफ ले जाना चाहा, पर वो आपको जब वापस भेजता है तो आप थोड़े बदल जाते हैं, अब आपका नॉलेज भी थोड़ा बदल जाता है और आपका जो कर्म है आप थोड़े बदल जाते। तो इसको उन्होंने कहा विज्ञान। तो इन सबका रिलेशनशिप है ना, व्हाट इज आवर नॉलेज, बेस्ड ऑन दैट आई परफॉर्म माई एक्शन, बेस्ड ऑन माई एक्शन मेरा भोग सुख दुख मुझे मिलेगा। अब यदि ये पूरी तीन चीजें साइकिल में सही हो जाए तो इट इज मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसको उन्होंने एक शब्द दे दिया विज्ञान। ये विज्ञान शब्द वो नहीं है जो साइंस वाला है, यह है विशेष ज्ञान। क्योंकि हमें जो ज्ञान मिलता है ये पांच इंद्रियों से मिलता है, जो हम सुनते हैं देखते हैं बोलते हैं ये सब, एक है ना हमें डायरेक्ट वहां मिल जाता है जहां ये इंद्रियां बाईपास्ड हो जाती है। क्योंकि वो हमें जब बोलता है ना तो उसे हमें इस कान की जरूरत नहीं है, तो वो हमें डायरेक्ट नॉलेज देता है। तो वो जो नॉलेज होता है उपासना के समय में वो देता है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान। इसको पतंजलि ने कहा है संप्रज्ञात योग, उसमें सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट भाव का आपको ज्ञान मिल जाता है, उसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। तो वैदिक फिलॉसफी में विज्ञान शब्द का अर्थ साइंस नहीं है। सॉरी, ये मैं बहुत कोशिश करता हूं आज कुछ न हो जाए, ये क्या बोलते हैं, हैंग हो गया सिस्टम, ऐसे मैंने यहाँ भेजी है इनको, पता नहीं ये लोग अभी डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं। मैं अब पता नहीं, कभी कभी एकदम गलत समय पर कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है। ये छोड़ देते हैं, इसके बिना भी काम चला लूं क्या मैं, ज्यादा ये हैंग हो गया मेरा कर्सर जा नहीं रहा। चलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ थोड़ा, तो अभी yeah I am trying to restart my computer, that will take, but I have sent the slide to library@ismhouston.org. if you can download there then you can, sorry about this unexpected, to hum baat kar rahe the jnan ka upasana usse jo vijnan hota hai। और इसमें अब मैं जाना चाह रहा था, दो विषय थे आज मेरे ध्यान में, सत्य और अहिंसा के। तो सत्य और अहिंसा पर जो हम विचार करना चाहते हैं उसको मैं इस थीम में लाना चाह रहा था। तो सत्य का, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ना दो तरह की भाषा में बात की है, एक मनु का एक वचन है, न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। यहां धर्म शब्द से आप वैसा समझिए कर्तव्य हमारा क्या है, क्या कर्म हमें करने चाहिए जो सारा मानव समाज कहेगा हाँ भाई उसने ये अच्छा काम किया है ना। आपने झूठ बोला तो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जो कर्म सबके द्वारा प्रशंसनीय हो वो हमारा धर्म है ना। तो व्यापक अर्थ में आप देखिए, इसको रिलीजन मजहब के अर्थ में मत देखिए। तो सत्य और अहिंसा के बारे में धर्म शब्द आता है तो मनु ने क्या कहा, न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। देखिए आपके उदय भी ये है, उपनिषद के वचन है, सत्यम वद धर्मम चय। ये सत्य शब्द है, कंफ्यूजिंग में नहीं कहूंगा, पर सत्य शब्द का बड़ा वाइड कॉनोटेशन है। सत्य शब्द ज्ञान के अर्थ में भी आता है, कर्म के अर्थ में भी आता है, और इसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मैंने आपसे ज्ञान कर्म और भोग की बात की, अब सत्य और अहिंसा की बात कर रहा हूं। तो सत्य शब्द ज्ञान में भी आएगा, कर्म में भी आएगा, लेकिन अहिंसा का संबंध है केवल कर्म से है, आप समझे ना इस बात को। तो मनु ने जब कहा न ही सत्यात् परो धर्म, तो यहां पर सत्य शब्द कर्म से संबंधित है, ज्ञान से नहीं संबंधित। कर्म इज व्हाट अफेक्ट्स अदर्स, ज्ञान डजंट अफेक्ट अदर्स, योर नॉलेज डायरेक्टली डजंट अफेक्ट। आप एक किताब पढ़ रहे हैं बट आपने कुछ कर्म किया तो दैट अफेक्ट्स अदर्स, इफ इट अफेक्ट्स अदर्स इन ए पॉजिटिव मैनर वो धर्म कर्म हो गया, और इफ इट अफेक्ट्स अदर्स किसी का नुकसान होया तो ये अधर्म का कर्म माना जाएगा। आप समझ गए ना? तो ज्ञान सत्य जो शब्द है उसका संबंध ज्ञान से भी है, कर्म से भी है। ज्ञान से तो बहुत ऑब्वियस है, हम सत्य जानना चाहते हैं, सही फिलॉसफी, सही साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो क्या है, हम सब दैनिक जीवन में भी सत्य जानना है। एक छोटा बच्चा भी बार बार प्रश्न पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, तो सत्य ही जानना चाहता है ना। तो सत्य को जानने की जो इच्छा है, सत्यान्वेषण कह लीजिए, तो सत्य शब्द का संबंध ज्ञान से भी है, और सत्य शब्द का संबंध कर्म से भी है। तभी तो मनु ने कहा न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से ऊपर का कोई धर्म नहीं है। और महर्षि दयानंद ने भी यही वाली अप्रोच ली है। तो इसी में आय समाज के 10 नियम की मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। पहला नियम है सब सत्य विद्या और जो पद, इसमें ऑब्वियस है, देखिए सत्य शब्द का ज्ञान से संबंध है, विद्या सत्य होनी चाहिए। दूसरे नियम में वो अंत में ईश्वर के गुण कर्म बताते हैं स्वभाव, अंत में कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। फिर वो कहते हैं हमें तीसरा नियम, सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ये भी जो है इसमें भी ग्रहण करने की बात आ रही है ना, तो सत्य क्या हो ग्रहण करना है। कई बार होता है ना, हम लोग सत्य जानकर भी सत्य को अपनाने में थोड़ी हिचक होती है, असत्य को छोड़ना नहीं चाहते। किसी ने कोई, किसी की कोई मान्यता है वो गलत है, अब किसी ने उसको समझा दिया कि भाई वो गलत है ये सही बात है, तो जो भी नहीं वो सही बात मान भी लेगा। बहुत से लोग सत्य को मानने में उनको समय लग जाता है। तो तीसरा नियम फिर से बोल रहा है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हाँ, ये स्लाइड इन्होंने ये पहले निकाल ली, इससे थोड़ा पीछे चले जाएंगे आप थोड़ा। हाँ यही है, तो लेट मी, सो वी आर फॉलोइंग, थैंक यू वेरी मच। सो द ज्ञान कर्म उपासना की बातें करके वो एक मैंने भूमिका बनाई थी, अब मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये जो दो शब्द हम सुनते हैं सत्य और अहिंसा, इसको कैसे सही पर्सपेक्टिव में लिया जाना चाहिए। तो मैं अब कहना चाह रहा हूं कि अहिंसा का संबंध कर्म से ही है, सत्य का संबंध ज्ञान और कर्म दोनों से है। तो अब हम देखेंगे आय समाज के जो 10 नियम है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया, पहले नियम में तो सत्य का ज्ञान से संबंध, दूसरे में तो ज्ञान दिया जा रहा हमें है ना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताए जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी नए हैं, हमें मालूम नहीं ईश्वर क्या है। तो एक ऋषि हमें बता रहा है, इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। शब्द प्रमाण ऐसा होता है अनुमान जैसा, यू कैन इमेजिन दिस, अनुमान है वहां पर ये हो रहा है, दूर से दिखाई दिया। अनुमान इज स्लाइटली लोअर स्केल देन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है डायरेक्ट परसेप्शन। फिर ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो सकता है, कैसे, उसी की उपासना करनी होगी। जब आप उपासना करोगे तो तुम्हें भी ये बातें प्रत्यक्ष दिखाई दे जाएंगी, है ना। अभी तो हम तुम्हें वेद में उपनिषद में ये लिखा है ईश्वर ऐसा ऐसा है ये बता दी। फिर तीसरा उन्होंने कहा, हाँ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो यहां भी शब्द सत्य है ना, कि सत्य का ज्ञान में प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा बहुत सी पुस्तकें हैं लेकिन वेद का विशेष महत्व है, क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। तो वेद का शब्द, वेद में जो सत्य शब्द है उसका फिर यहां से नॉलेज वाले डायमेंशन से संबंध है। यहां एक शब्द धर्म भी आया है, सब आयुओं का परम धर्म है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनना। यहां धर्म शब्द कर्तव्य के अर्थ में है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू, यू डू सो मेनी थिंग्स इन योर डेली लाइफ, लेकिन दिस इज मोस्ट पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एक्टिविटी यू शुड डू। अब चौथा नियम जो मैं बोल रहा था, सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में, यहां भी सत्य शब्द का संबंध नॉलेज से। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब पांचवा है, यहां भी सत्य शब्द है लेकिन यहां कर्म से संबंध है। देखिए अभी तक हम ज्ञान में थे, अब हमारा कर्म में आ गया डायमेंशन, तब वो बता रहे हैं सब काम कैसे होने चाहिए धर्म के अनुसार। अब धर्म या रिलीजन मत में बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की खोपड़ी में इतना डाल दिया गया है ना कि हम बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज की भाषा बहुत बदल गई है ना, सभी पदों के अर्थ विगत बदल गए हैं, तो किसी से भी वार्तालाप करना इतना आसान नहीं है। कल शेखर जी से मेरी बात हो रही थी, अब ब्रेन और माइंड और कॉन्शियसनेस ये सब बातें इतनी वो हो गई हैं, किसी से बात करने के पहले एक दो घंटा तो एक प्लेटफॉर्म बनाने में, ताकि वेवलेंथ सही हो, मैं कुछ बोल रहा हूं वो क्या समझ रहा है, इसी को स्थापित करने में लग जाते हैं, क्योंकि हर किसी का सोचने का ढंग अलग है। तो यहां पर क्या कहा, सब कर्म आपके कैसे हो, धर्मानुसार, है ना। और फिर उन्होंने उसको एक बात कह दी, धर्म के बारे में कुछ आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो सत्य और असत्य को विचार करके कहने चाहिए, है ना। तो यहां मनु वाला वो स्टेटमेंट है, न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य के परे कोई धर्म नहीं है। फिर बाकी को मैं अब ज्यादा नहीं ले रहा, पहले पांच नियम आर्य समाज के हैं, एक इंडिविजुअल को आपको आर्य कैसे बनना है। बाद के नियम है, अब आप दो चार छह लोग जब मिल गए हैं अब क्या करना है, अब यार इसको समष्टि का बोलते हैं, वो है व्यष्टि वाले, बात के हैं समष्टि के, हमें मिलजुल कर क्या करना है, सब संसार का उपकार करना है, सबसे प्रीतिपूर्वक करना है, और कुछ काम करना है तो अच्छा प्रोजेक्ट क्या लेना है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, और सबसे प्रीतिपूर्वक, और फिर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, और सब सर्वित का नियम में परिवर्तन। ये अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज में मैंने कहा, सत्य शब्द के कोनोटेशन कैसे आए हैं, नॉलेज की दिशा में आए हैं पहले तीसरे चौथे नियम में, और कर्म की दिशा में आए हैं पांचवें नियम में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैंने वेद बनते रखा है, आपने वेद में ये सत्य नॉलेज की दिशा में क्या आया है, वहां एक ही शब्द को आप देखिए पहली लाइन में है, सच्चा सच्चम, उसको हम संधि में देखेंगे, सत च असत च, कोई भी चीज जानो तो उसमें से सत्य और असत्य को अलग अलग करो, सत्य को अपनाओ असत्य को मत अपनाओ, ये बात इस मंत्र में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मनु का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि न ही सत्यात् परो धर्म, इस दिशा में ये हमारा एक्शन बेस्ड प्रिंसिपल है, यदि आपके कर्म ऐसे हैं तो आपको कर्मों का फल भी अच्छा मिलेगा ऐसे। अब देखिए एक दूसरा व्यू पॉइंट ला रहे हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ये पतंजलि का स्टेटमेंट है योग दर्शन में, जब वो इसको यम बोलते हैं, आप जानते हैं अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो यम में उनके पांच स्टेटमेंट पांच एलिमेंट हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ऐसे उन्होंने अहिंसा भी लिखा है सत्य भी लिखा है, पर यहां एक बड़ी गहरी फिलॉसफी है कि अहिंसा का स्थान ऊपर है, है ना। तो उनका एक स्टेटमेंट है कि यदि अहिंसा को परम धर्म मान लिया जाए तो सारी समस्या हल हो जाती है, है ना। तो उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट आता है व्यास भाष्य में कि द की धर्म, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, अहिंसा बेस्ड। अहिंसा को आजकल नॉन वायलेंस बोलने लगे हैं, है ना, बट आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट नॉट एज नॉन वायलेंस, एज नॉट टू हर्ट एनीबडी, है ना। समटाइम्स यू मे नॉट बी वायलेंट बट यू मे बी कॉजिंग हर्ट टू अदर्स, है ना, यू माइट बी हार्मिंग टू अदर्स इवन दो यू आर नॉट वायलेंट। तो इस भावना को रखकर हमने कहा नॉट टू हर्ट अदर्स। तो पतंजलि की क्या अप्रोच है, अहिंसा परमो धर्म, है ना, अहिंसा टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल दिस। मैं भी ये स्लाइड तो मुझे पीछे नहीं देखना पड़ेगा, मेरा भी खुल गया है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड, या आप मेरा देखना चाहते हैं, आई विल गो इन स्लाइड शो मोर, ओके। सो आई एम प्रेजेंटिंग द कंट्रास्ट, आई विल गो स्लाइटली फास्ट नाउ। सो द क्वेश्चन नाउ वी आर फेसिंग इज व्हाट इज आवर धर्म। मनु ने कहा न ही सत्यात् परो धर्म, पतंजलि ने कहा अहिंसा परम धर्म। तो आई वॉन्ट टू गिव यू टू इंस्टेंसेज दैट, ये सब हमारे वैदिक लिटरेचर में आता है, सत्य वाला बोलता है समझिए आपके देश की सीमा पर शत्रु सेना ने आक्रमण किया है। तो सत्य वाला कहना चाहता है कि यह सत्य वो सीमा का हमारा उल्लंघन कर रहा है, दिस इज वायलेशन ऑफ ट्रूथ, सो वी मस्ट किल हिम, है ना। अब वो कहता है अहिंसा वाला क्या करेगा, अहिंसा वाला तो डजंट बिलीव इन हर्टिंग अदर्स, तो अहिंसा वाला दुश्मन से लड़ेगा भी नहीं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ये सत्य वाले ने कहा, समझ रहे ना। अहिंसा वाला बोलता है, वहां पर एक घटना बताते हैं, आप घर के बाहर एक चौपाल पर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, एक गाय दौड़ी दौड़ी जा रही है, आपने देखा वहां आगे एक तैयार है, वो दाहिने मुड़ गई, पीछे फिर एक कसाई आता है, उसको गाय दिखाई नहीं दे रही है, वो आपसे पूछता है गाय कहाँ गई। अब अहिंसा वाला बोल रहा है हम तो झूठ बोलेंगे कि गाय बाएं मुड़ गई है, जबकि मुड़ी है दाहिने, क्योंकि हम गाय को बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते वो गाय को मार डाले। तो बोल रहा है अहिंसा वाला ये दृष्टांत देकर बताता है कि यदि आप सत्य का पालन करोगे तो आपकी तो गाय की हत्या होगी बिना बात के, उसने तो कोई अपराध किया नहीं है। तो ये दो घटनाएं दिए जाते हैं इस बात को बताने के लिए। तो इसमें मनु और पतंजलि का सत्य न ही सत्यात् पयो धर्म न ही अहिंसा परम धर्म में कहीं कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। ये वैदिक दृष्टिकोण ऐसा है कि इसको पूरा होलिस्टिकली समझना पड़ता। तो ये जो सत्य वाले ने कहा कि शत्रु की सेना अंदर आ रही है तो हम क्या कहेंगे, तो अहिंसा वाला इसका जवाब दे सकता है, हम उनको गोली से मार देंगे, हमारी सेना को आदेश देंगे उनको मार दिया जाए। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, अहिंसा वाले से पूछता है। अहिंसा वाला बोलेगा हमारा इंटरप्रिटेशन ऐसा है, क्योंकि शत्रु की सेना हमारी सीमा में आ गई तो हमारी जनता को दुख दर्द बढ़ जाएगा और वो हिंसा हो जाएगी उनकी, नॉट टू हर्ट अदर्स विद दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड वी विल नॉट लेट फॉरेन फोर्सेस एंटर इनटू आवर बाउंड्रीज, है ना। तो सत्य और हिंसा चीज एक ही है, ये बोलने के दो अलग अलग ढंग हैं। तो न ही सत्यात् पयो धर्म भी वही है, अहिंसा परम धर्म भी वही है। सत्य का अर्थ बहुत ज्ञान और कर्म दोनों जगह व्यापक है। कुछ फिलोसफर्स कुछ ऋषियों ने सत्य की भाषा में बात की, दयानंद ने हमेशा कहा है सत्यमानी सत्यवादी सत्य का ही बनना, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य को जानना मानना बोलना और वैसा ही कर्म कर। तो वही अब गाय वाली जो घटना है, अहिंसा वाला जिसको चैलेंज कर रहा था, सत्य वाला बोल सकता है मैं भी उस कसाई को उस आदमी को झूठ बोलूंगा, क्यों, क्योंकि गाय की हत्या होना एक बहुत बड़े सत्य का उल्लंघन है, क्योंकि सत्य क्या है, सबको जीने का अधिकार है ना, यह भी एक सत्य है, उस गाय को इस संसार में जीने का अधिकार उतना ही है जितना हम सबको है, उस नई गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, यह भी एक सत्य है, इसलिए मैं उसे मिसगाइड करूंगा झूठ बोल के, आप समझ है ना। तो सत्य और अहिंसा एक ही चीज है, उसके दो पक्ष हैं, हाउ डू यू प्रैक्टिस इट। तो ज्ञान कर्म उपासना की कहानी से मैंने कहानी शुरू की थी, तो लेट मी क्विकली समराइज इट। नॉलेज मस्ट बी गाइडेड बाय ट्रूथ, ट्रूथ सत्य को जानना चाहते हैं, एक्शन मस्ट फॉलो सत्य और अहिंसा, जिसको भी आप 100% आप इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे यू आर ऑन द राइट पाथ 100%, ऐसे ही कहने दिखाने के लिए ही नहीं, आप सत्य का रास्ता पूरा अपनाएंगे तो भी आपका कर्म हमेशा अच्छा है, आप अहिंसा का रास्ता पूरा अपनाएंगे आपका कर्म हमेशा अच्छा है, कर्मों के फल हमेशा अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप ये सुख दुख की स्पेक्ट्रम से ऊपर जाना चाहते हैं, एक नई दुनिया भी है उसको आप देखना चाहते हैं, तो सुषुप्ति का जो आपको रात में यदा कदा आनंद मिलता है उसी का एप्लीका जो है उपासना को अपनाइए, एंड नॉलेज एंड एक्शन दैट विल मेक मोर एंड मोर सुपीरियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।
करीना।